एक सवाल आया जिसमें लिखा है कि हदीस का मफहूम है जो करबला का मैदान जीतेगा वो जन्नती है
जी,
जो करबला का मैदान जीतेगा वो जन्नती है। लोग इस हदीस को पेश करते हैं और ये मतलब निकालते हैं कि यजीद ने करबला का मैदान जीता तो यजीद जन्नती हुआ।
ब्राहिम मेहरबानी, ये बेचारे भूल गए, ये समझे नहीं कि मसला क्या है। कोई ऐसी हदीस नहीं है, ये हज़रत उम्मे हराम से बुखारी शरीफ के अवाइले में ये हदीस है कि वो यूँ है हदीस कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ सो रहे थे, अचानक हुजूर बेदार हुए तो हुजूर मुस्कुराते। हज़रत उम्मे हराम ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या मामला? फरमा, मैंने उम्मत के कुछ अफराद को देखा कि मदीनतुल कैसर पर हमला आवर हैं और वो जन्नती हैं। असल हदीस ये है, तो इसमें वो ये कहते हैं कि चूंकि उस जंग में यजीद सपे सालार था लिहाजा यजीद जन्नती है। ठीक है ना, ये तो हो ही नहीं सकता कि हुजूर फरमाएं जो मेरे नवासों को कत्ल करे करबला का मैं और वो जन्नती, तो बिल्कुल ही बरक्स बात है ना कि हुजूर ने अपने घराने को मरवाने पर लुटवाने पर उसको जन्नती करार दिया। हदीस ये है जो बुखारी शरीफ में मौजूद है। अच्छा, अब फरमाया कि जो मदीनतुल कैसर पर हमला करे वो जन्नती है। अब आइए मदीनतुल कैसर, जिसको कुस्तुनतुनिया कहते, जिसको आज हम इस्तंबुल कहते, वहाँ ये हमला कब हुआ? अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ने इस हदीस की शरह में लिखा, कहा जाता है कि 51 हिजरी या 52 हिजरी में हज़रत अमीर माविया रदियल्लाहु अन्हु के दौर में एक लश्कर आपने इस्तंबुल कुस्तुनतुनिया की फतेह के लिए भेजा। जब इस लश्कर को भेजा तो ये लश्कर जब वहाँ पहुँचा तो पहले पहल ये बेशुमार सौबतों का बीमारी का शिकार हो गया। ठीक, अब वो शिकार होने के बाद उन्होंने दरख्वास्त की हज़रत अमीर माविया से कुमक के लिए, आप कुछ और फ़ौज भेजें। तो ये जब वहाँ से आई बात, अब ये हदीस में नहीं, इसको नकल किया कामिल इबन असीर ने अपनी किताब तारीख इबन असीर। एक तो इबन कसीर अलग है, उसकी तारीख का नाम अलबिदाया वन नहाय, ये इबन असीर है और इसने अपनी 8वीं जिल्द में इसका तस्करा किया। और वो तस्करा ये है कि ये जब ख़त अमीर माविया के पास आया रदियल्लाहु अन्हु, ये यजीद के हाथ लग गया, तो यजीद ने उस ख़त को पढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा किया, बड़ा अल्लाह का शुक्र है कि मैं वहाँ नहीं गया, अगर मैं जाता तो मैं भी बड़े ज़िल्लत के अज़ाब में मुब्तला होता, वगैरह वगैरह। चूँकि वो शायर भी था, 2 मिसरे उसने लिखे इस पर जो कामिल इबन असीर में मौजूद है। लिखने के बाद उसको कहीं रखना भूल गया और वो 2 मिसरे हज़रत अमीर माविया के हाथ आ गए। तो हज़रत अमीर माविया ने पढ़ के ख़त को देख लिया कि यजीद ने लिखा। फरमा, जो अल्लाह के रास्ते में लोग गए हैं तो उनका ठट्टा और तमस्खुर करता, अब कसम खुदा कि मैं तुझे भेजूँगा। अब काई के लिए भेजा, बतौर सज़ा यजीद को भेजा। इबन असीर की रिवायत के मुताबिक जब दूसरा हमला हुआ तो उसमें यजीद बिन माविया, ये दूसरे हमले, और बुखारी में जो रिवायत है वो अव्वला जेशा फरमाए, पहला लश्कर जो जाएगा वो जन्नती। इसीलिए हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु अन्हु जो बहुत उम्र रसीदा थे और वो इस जंग में शरीक हुए, लोगों ने पूछा कि आप तो जंग भी नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं, इतनी उम्र में क्यों? तो उन्होंने कहा, मैंने हदीस सुनी है कि हुज़ूर फरमाए जो इस जंग में शरीक हो वो जन्नती, इसलिए मैं इस जंग में जा रहा हूँ। यही वजह है कि इस्तंबुल में हज़रत अबू अय्यूब अंसारी का मज़ार है और दीगर साहबा कराम के मज़ार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उन तमाम मज़ारात पर हाज़िरी दी कोई आज से 8-10 साल पहले। अब आइए, अब देखा जाए, अल्लामा बदरुद्दीन फरमाते कि लोगों ने यह कहा कि यजीद उसका सुपे सालार था। फरमा, मैं पूछता हूँ कि जिस लश्कर में हज़रत अबू अय्यूब अंसारी जैसे लोग हों, क्या उनकी कमाने का छोकरा करेगा? क्या उनकी कमाने का लड़का करेगा? अब सवाल ये हुआ कि उसका सुपे सालार कौन था? इब्ने असीर के मुताबिक इस्तंबुल पर जब हमला हुआ हज़रत अमीर माविया के ज़ोर में 51 या 52 हिजरी में, उसके सुफ़े सालार हज़रत सुफियान इब्ने औफ थे। अगर जन्नती है तो वो गिरो जन्नती, ये तो बतौर सज़ा भेजा गया। और अगर लोग इसी तरह कहें जन्नती, तो मैं चंद निकात आपके सामने रखता हूँ। क्या इसका मतलब ये है कि जो भी कोई हो वो जन्नत में चला जाए? फरमा, माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत, तो जो जी चाहे क्या सीधा जन्नत में चला जाए? फरमा, जिसने 2 ठंडी नमाज़ें पढ़ ली वो जन्नती, क्या ये सब जन्नत में चले जाएँ? لہٰذا یہ ہے کہ اگر کسی کو جنت کی بشارت دی اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہو، جیسے بعض صحابہ کرام ایمان لائے، ایک کاتب وحی تھا، وحی لکھتے لکھتے خود نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا، اب تو صحابی نہیں رہا نا، تو حضور علیہ السلام کو جلال آ گیا، فرما زمین تو اسے قبول مت کرنا، جب وہ مرا ہے کتنا ہی گہرا کھڈا کھود کے اس کو ڈالا مگر زمین نے اچھال کر اس کو باہر کر دی، پھر مجبور ہو کر کیا کیا کہ اس کی لاش کو رکھ کے اس کے اوپر مٹی ڈال دی، تو ایسا بھی ہوا کہ کاتب وحی تھا اور نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہزاروں کی جماعت نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، جب زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو مرتد ہو گئے، اب صحابی کہاں رہے، جب صدیق اکبر نے فوج کشی کی اور ان سے لڑے، وہ ہار گئے، شکست کھا گئے، تب وہ اسلام لائے کہ ٹھیک ہے جی اب ہم توبہ کرتے ہیں، توبہ تو منظور کر لی گئی مگر شرف صحابیت سے محروم ہو گئے، تو یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر بھی ہوا یا نہیں، تو اس لیے یہ ہے یزید کے بارے میں بشارت، تو یہ بالکل ایک لغو استدلال ہے کہ جس میں کوئی طاقت اور کوئی قوت نہیں ہے، اصل حقیقت یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔